ओके तो हम लोग रेसिपी के बारे में जानने के लिए हैं। कितने लोगों को रेसिपी का पता है? कौन सी रेसिपी? हमारी बहनें सोच रही हैं कौन सी रेसिपी। तो कोई खाने की रेसिपी नहीं है डेफिनेटली, लेकिन ये हमारी माइंड की रेसिपी है, कॉन्शियसनेस इम्प्रूवमेंट, कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट की रेसिपी, राजयोग एजुकेशन एंड कॉन्शियसनेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एजुकेटर्स। थोड़ा लंबा नाम है, लेकिन ये रेसिपी का जो प्रोग्राम है 2016 में हमने लॉन्च किया था, आदरणीय दादी जानकी जी ने इसका उद्घाटन किया, और इसकी हमने 6 बुक्स बनाई हैं रेसिपी प्रोग्राम की। कंसर्न, मेन मोटिव क्या था रेसिपी प्रोग्राम लॉन्च करने का, कि बहुत सारे भाई बहन आकर के हमको कहते थे कि हम एलिजिबल नहीं है कोई भी वैल्यू एजुकेशन कोर्स करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 10th की मार्कशीट नहीं है, 12th की हमारे पास डिग्री नहीं है, हम सिर्फ मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, और हम लोगों की डिमांड होती है यूनिवर्सिटी की 10+2 जरूर होना चाहिए एडमिशन के लिए कोई भी वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम में। अगर आपको बीएससी करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो कोई भी कोर्स में, अगर डिप्लोमा कोर्स में भी एनरोलमेंट चाहिए तो उसके लिए भी 10+2 की या मैट्रिकुलेशन की डिग्री चाहिए, राइट? तो इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया कि कोई भी पढ़ सके, कोई भी ये बुक्स बाय करके इस पढ़ाई को, वैल्यू एजुकेशन की, कोई भी अपने घर पे भी पढ़ सके और बाद में सेवाओं में उसको यूज कर सके। तो हमने 6 बुक्स जो डिजाइन की है वो सेम ही वैल्यू एजुकेशन के कोर्स मटेरियल को लेकर के इसका पूरा कोर्स बनाया गया है। जो रेसिपी प्रोग्राम है वो फुल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फुल्ली कस्टमाइजेबल है, उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जो आपको चाहिए, क्योंकि उसमें ऑल ओवर जितने टॉपिक्स हैं वैल्यू एजुकेशन में, जितने टॉपिक्स भी हम यूज करते हैं वो सब उसमें कवर्ड है। तो 6 बुक्स जो हमने बताई है, एक्सपीरियंशियल बेस्ड, हर तरीके से हमने उसको फुल्ली फ्लेश्ड बनाया है, ताकि किसी को भी पढ़ना हो, वो पीपीटीज की फॉर्म में भी अवेलेबल है, हमारे पास बुक्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप हमारे पास आके उसको ले सकते हो। अभी हमारे पास प्रिपेयर्ड फैकल्टी है, बल्कि आप सब फैकल्टी ही हो। अभी आप सब फैकल्टी हो या नहीं हो? आप सब ने वैल्यू एजुकेशन कोर्स किया है, तो आप खुद भी फैकल्टी हो, खुद भी ट्रेनर्स हो, राइट? अभी आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, मुझे यहां पर आपको वैल्यू एजुकेशन क्या है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हो, लेकिन आप इन सेवाओं को आगे कैसे बढ़ाओगे उस चीज की ये ट्रेनिंग है, इसलिए ये बुक्स बनाई गई है। तो आप अपने लेवल पे जाकर के स्कूल्स में सेवाएं दे सकते हो, कॉलेजेस में सेवाएं दे सकते हो, यूनिवर्सिटीज में अप्रोच कर सकते हो, और इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है रेसिपी कोर्स करने के लिए। आप चाहे तो 11th 12th के बच्चों को भी ये कोर्स रेसिपी का प्रोग्राम लेकर के, उनको बुला करके, चाहे अपने सेंटर पे करा सकते हो, या आपके पास कोई स्पेस है वहां करा सकते हो, कहीं पर हायरिंग पे स्पेस लेके करा सकते हो, और नहीं तो स्कूल्स में पर्सनली जाकर के भी हफ्ते में एक बार या दो बार आप ये प्रोग्राम करा सकते हो, यूनिवर्सिटीज में जाके करा सकते हो। और क्योंकि आपके पास अभी डिग्रीज हैं सबके पास, इसलिए आप कहीं भी अप्रोच करोगे तो आपको अलाउ होगा, परमिशन होगी उस यूनिवर्सिटी स्कूल से कि आप ये वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम करा सकते हैं। और ये एक्सपीरियंशियल बेस्ड ट्रेनिंग है, वर्कशॉप बेस्ड ट्रेनिंग है, तो इसमें आप एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व कर सकते हो जो उनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि ये टेलर्ड मेड प्रोग्राम है। तो जैसे आपको कोई स्कूल इन्वाइट करता है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन्वाइट करती है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि बेसिक क्या प्रॉब्लम है वहां पे जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स है, काउंसलिंग है कि बच्चों में स्ट्रेस ज्यादा है, तो कैसे हम उनकी काउंसलिंग करें। काउंसलिंग को लेकर के ही केवल आप रेसिपी प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हो, खुद से डिजाइनिंग कर सकते हो कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, वही टॉपिक्स पर्टिकुलरली लेकर के आप बच्चों की वर्कशॉप्स रख सकते हो, चाहे तो 42 आवर्स का प्रोग्राम रख सकते हो, चाहे 3 डेज का, 1 वीक का भी बना सकते हो। हमारे पास कोर्स मटेरियल बहुत है, अभी हम चाहे तो उसको कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं। चाहे आप उसको हाफ डे का प्रोग्राम भी बना सकते हो। हमने रेसिपी प्रोग्राम्स काफी जगह रखे, हमने भरूच में रखा, गुलबर्गा में रखा था, पंजाब में रखा, तो उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया और काफी बहनें हैं जो खुद से अभी ट्रेनिंग्स दे रही हैं उस तरीके की। और जो टॉपिक्स हैं इसमें कवर है, 6 बुक्स हैं। तो पहली बुक राजयोग, बेसिक राजयोग का कोर्स है, इसमें जो आपने सबने पढ़ा भी है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन में, ये वही टॉपिक्स हैं सेम। तो उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं कि बेसिक राजयोग का कोर्स में एक्सप्लोरिंग द सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एस्टीम, सुप्रीम बीइंग, ट्रुथ्स ऑफ लाइफ, लॉज ऑफ लाइफ, राजयोग का मेडिटेशन एंड द पावर्स, और नेक्स्ट वैल्यूज को लेकर के भी बुक्स हैं। जो इसमें 6 बुक्स हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस को लेकर के हैं, होलिस्टिक हेल्थ को लेकर के है, एक्सीलेंस इन लाइफ जिसमें आपके रिलेशनशिप्स, इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल हीलिंग, रिजेंटमेंट मैनेजमेंट और एक्सपीरियंसिंग मेडिटेशन, ये हमारी जो बुक है ये पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है। फिर बाद में जो मोड्स ऑफ ट्रेनिंग है, इसमें आप 3 डेज कैप्सूल प्रोग्राम, हमने जब भी प्रोग्राम किए तो बहनों ने कहा कि हम 1 डे का प्रोग्राम रख सकते हैं या 3 डेज का रख सकते हैं, तो 3 डेज की हमने ट्रेनिंग रखी और टॉपिक्स डिफाइन किए। फैकल्टी हमने मधुबन से ऑर्गेनाइज की, जब बहनों ने कहा हमारे पास फैकल्टी नहीं है तो यहां से हमने फैकल्टी अरेंज करके वहां पे 3 फैकल्टीज को भेजा या 2 फैकल्टीज को भेजा, उन्होंने वो ट्रेनिंग दी। और 4th डे हमने फिर नॉन बीकेज का एक सेमिनार रखा, तो उससे क्या होता है आपके सेंटर पे भी लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि सेंटर पे बहुत से ऐसी माताएं या ऐसे भाई आते हैं जो सेवा, जो बोलते बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। तो ऐसे लोगों को अगर आपको यूज करना है सेवाओं में, स्कूल्स कॉलेजेस में सेवाओं के लिए यूज करना है, तो उनको आप सेंटर पे ये ट्रेनिंग दे सकते हो। और फिर हम लोग 4th डे नॉन बीकेस का प्रोग्राम रखते हैं, तो नॉन बीकेस का एक सेमिनार रखते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फैकल्टी है वैल्यू एजुकेशन की, तो हमने 4th डे एक सेमिनार रखा। तो बहुत लोग, कुछ वाइस चांसलर्स को हमने इनवाइट किया यूनिवर्सिटीज के, तो वहां के स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत अच्छी सेवाएं हो गई। तो रेसिपी के माध्यम से हमने देखा कि काफी लोग इसके साथ जुड़े। इसकी जानकारी के लिए आप मेरे पास आकर के जो भी आपको बुक्स चाहिए वो आप ले सकते हो, इसका प्रोग्राम आप प्लान कर सकते हो, बता सकते हो कि कब आप रेसिपी अपने सेंटर पे रखना चाहते हैं, उसी अनुसार हम आपका पूरा प्रोग्राम बना देंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्योंकि आप सब यहाँ पहुंचे हो स्नेह मिलन के लिए, तो स्नेह मिलन तो हो रहा है लेकिन हम चाहते हैं आपसे अभी हमें रिस्पॉन्स मिले। ये जो कोर्स है हमारा, क्योंकि इसकी बुक्स अभी इंग्लिश में बनी हुई है, तो हमारे पास हिंदी में बुक्स की डिमांड आ रही है, नॉर्थ साइड से स्पेशली, कि हमें हिंदी में बुक्स चाहिए, तो उसके ट्रांसलेशंस हमको करवाने हैं। तो जितना फास्ट वो काम हो सके, ट्रांसलेशन हो, फिर उसकी एडिटिंग हो, फिर हम बुक्स को प्रिंट करें, तो आप में से कौन है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से हिंदी के ट्रांसलेशन में हेल्प कर सकते हैं? जो लोग वो खड़े हो जाएं प्लीज। लेकिन ये आप देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ऐसा नहीं है कि हमने हाथ खड़ा कर दिया, हम आ गए और फिर हम भूल गए, नहीं। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर सकते हैं, क्योंकि यहां आप सबको बुलाने का हमारा पर्पस यही था कि वैल्यू एजुकेशन की कुछ सेवाओं में हम लोगों को इन्वॉल्व करें, अदरवाइज क्या मीनिंग क्या है? क्योंकि हम एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं वैल्यू एजुकेशन का, सो वी वांट इनपुट्स फ्रॉम यू, आप लोगों से हमें, हम इसमें क्या और सुधार करें वैल्यू एजुकेशन की सेवाओं में, इसलिए यहाँ पे आपको बुलाया है, ये एजुकेशन फेस्ट हमने रखा है। तो इसलिए हिंदी के ट्रांसलेशंस जो हैं रेसिपी के, जो कर सकते हैं वो हाथ उठाए। आप ये समझ लो, आप किस, जो वैल्यू एजुकेशन की किताबें हैं जो एमएससी फर्स्ट ईयर की या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वेल एजुकेशन फर्स्ट जो है उस वो किताबें कितने लोगों ने पढ़ी हैं, क्योंकि मेन कोर्स कंटेंट वहीं से ही लिया हुआ है तो उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करना है, तो क्या वो संभव है आप लोगों के लिए? हो सकता है? तो जो लोग के लिए पॉसिबल है वो वो मेरे से आकर के मिले, हिंदी ट्रांसलेशन जो कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक टाइम दूंगी कि इस टाइम के अंदर आपको डेडिकेटेडली इतना टाइम अलॉट करके ये ट्रांसलेशन करके देना है, लेकिन आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे, आप पे बर्डन नहीं डालेंगे, आपको यूनिट वाइज दे देंगे कि एक यूनिट आप कर लीजिए, एक यूनिट आप कर लीजिए, ओके? तो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि ये सबके लिए मदद हो जाएगी। हिंदी की बहुत डिमांड है कि हिंदी में हमें ट्रांसलेशन चाहिए रेसिपी की बुक्स के, ओके? अच्छा, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट हमारा जो स्वयं प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं आपको कुछ टॉपिक्स देना चाहती हूँ। इस टॉपिक्स को लेकर के मुझे कुछ राइटिंग्स चाहिए। राइटिंग्स मीन्स आपके व्यूज। तो मैं टॉपिक्स बोलती जाती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो उस पर लिख करके अपने व्यूज एक्सप्रेस करके या अपने खुद से, चाहे आप इंटरनेट पे सर्च करो या खुद से लिखो, खुद से एग्जाम्पल्स मेंशन करो, तो कुछ आर्टिकल्स लिखो, चाहे आप एसेज लिख सकते हैं या पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। पहला है फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग पे कौन लोग कौन कौन लिख सकते हैं? कब तक सबमिट कर सकते हैं? जो अभी ये जो राइटिंग है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, हिंदी और इंग्लिश, नो अदर लैंग्वेज बट हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में लिखिए। फिजिकल वेलबींग, टू पेजेस, या अगर आपको लगता है कि आप कम शब्दों में बता सकते हो तो कम शब्द भी अच्छा है, अगर आपको लगता है इससे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा में भी आप लिख सकते हो। वर्ड लिमिट 1000 वर्ड्स, यस 500 to 600 वर्ड्स, और थोड़ा एग्जाम्पल बेस्ड हो तो बहुत अच्छा है। अगर उसमें एग्जाम्पल्स दें, हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दें, केवल फिलोसॉफिकल बातें ना करें, थ्योरिटिकल बातें ना करें। कौन लिख सकते हैं फिजिकल वेलबींग? ओके, अच्छा, टाइम लिमिट कितना सेट करेंगे, कब तक दे सकते हैं? नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है, आप जब तक आप जा रहे हैं उससे पहले दे दें। कब तक जा रहे हैं? 10 तारीख तक जाने वाले हैं, 11 तारीख जाने वाले हैं, तो जब आप जा रहे हैं उससे जाने से पहले दे दे। इमोशनल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग समझ लीजिए या इमोशनल हीलिंग समझ लीजिए। इमोशनल हीलिंग जानते हैं? क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी हमको चाहिए और इमोशनल मैच्योरिटी बहुत लोगों में नहीं होती है, धीरे धीरे करके इमोशनली हम लोग वीक होते जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए इमोशनल हीलिंग की बहुत जरूरत है। इमोशनल हीलिंग पे कौन कौन लिख सकते हैं? इमोशनल वेलबींग पे और लोग तो कोई हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। अगर आपके आर्टिकल्स अच्छे हुए तो हम उसको पब्लिश करेंगे। आपको पता है ना, हमारा शिक्षा दर्पण एक न्यूज़लेटर निकलता है, और भी एजुकेशन की बहुत सेवाएं होती हैं, तो उसके हम आर्टिकल्स निकालते हैं। तो अगर आप लिखेंगे, केवल वैल्यू एजुकेशन कर लिया लेकिन उसका यूज तो हो, कहीं आपका एक्सप्रेशन किधर है, तो ये सेवा में यूज होगा। इमोशनल हीलिंग और इमोशनल वेलबींग जो लिख सकते हैं वो नोट करें। मेंटल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, ओके, सोशल वेलबींग, ओके, स्पिरिचुअल वेलबींग, कोई है जो स्पिरिचुअल वेलबींग पे लिख सकते हैं? स्पिरिचुअल वेलबींग में क्या क्या आता है? स्पिरिचुअली हम ये वेलबींग की जब बात आती है तो वेलबींग जो होलिस्टिक हेल्थ है वो कैसे बनती है हमारी? जब हर चीज अच्छी है, जो हमारा हमारी हेल्थ अच्छी है वो इस कैसे माना जाता है? ये नहीं कि हमारी बॉडी एकदम हेल्दी है, बॉडी में कोई बीमारी नहीं है किसी तरीके की। अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है तो नेचुरली हम कहते हैं हम हेल्दी हैं। लेकिन मन से अगर हम उदास हैं, चिंतित हैं, स्ट्रेसफुल हैं और हम कहें कि हम हेल्दी हैं तो ये गलत होगा। ओके, जो पूरी कंप्लीट होल वेलबींग की जब बात आती है तो हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, हमारी एनवायरमेंटल हेल्थ, हर चीज को कंसीडर किया जाता है, नॉट जस्ट बॉडी। तो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग भी जरूरी है। तो ये एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके हम ये होलिस्टिक हेल्थ क्या है उसके बेसिस पे हमें लिखना है। फिर नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे कौन लिख सकता है? एग्जाम्पल बेस्ड, एग्जाम्पल बेस्ड, जिसमें एग्जाम्पल्स हों, अच्छे एग्जाम्पल्स हों। हमारे माइंड के कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, वर्कप्लेस पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, खुद से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही है तो हमारे अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा है, हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं उन बातों को और घुट ही रहे हैं अंदर से, या लोगों के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण से, हेल्थ प्रॉब्लम के कारण से, या एनवायरमेंट ठीक नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट है, या फाइनेंशियल हेल्थ हमारी ठीक नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जहां आपका मन स्थिर नहीं है, कंटिन्यूस चल रहा है, युद्ध है एक, तो उसको मैनेज हम कैसे करें? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट इज एडिक्शन। एडिक्शन के ऊपर कौन लिख सकते हैं? वेरी गुड, काफी लोग हैं। एडिक्शन में भी स्पेशली जो मेंशन करना है वो क्या है? ब्रेकिंग अ बैड हैबिट, अपनी बुरी आदत पे कैसे विजय पाएं? हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट, लिख सकते हैं उस पे? तो उसमें आपको कुछ स्टेप्स बताने होंगे, कुछ प्रोसेस बताना होगा कि इस प्रोसेस से अगर आप निकल जाते हो तो आप इस हैबिट को ओवरकम कर सकते हो। जैसे कोई भी झूठ बोलने की आदत है, उसको कैसे खत्म करना है? और जरूर मोटी मोटी बातें तो ठीक हैं कि भाई शराब पीने की आदत है उसको कैसे खत्म करना है, सिगरेट पीने की आदत है, कंप्यूटर पे ज्यादा इंटरनेट की हमको आदत पड़ चुकी है, इंटरनेट एडिक्शन है, कंटिन्यूस मोबाइल एडिक्शन है, तो ऐसे ऐसे एडिक्शंस जो हैं, किसी को बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत है, कॉफी, आपको जो लगता है आप वो एडिक्शन लो, आप कोई भी एडिक्शन, क्योंकि एडिक्शन बहुत सारे होते हैं, कोई एक एडिक्शन नहीं है, आप जिस एडिक्शन में आप कंफर्टेबल हो आप वो लो एडिक्शन। और हम अगर आप मल्टीपल एडिक्शन अलग अलग लोगे तो हमारे पास एग्जाम्पल ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए गो फॉर वन एडिक्शन, आपको जो लगता है कि ये एडिक्शन के बारे में आप लिख सकते हैं तो वो एडिक्शन को लो, अगर आप दो एडिक्शन ले सकते हो तो दो को लो। बट अ कॉन्क्रीट प्रोसेस शुड बी डिफाइंड कि इस स्टेप से अगर आप करोगे तो आप इस बैड हैबिट को कॉन्कर कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट है एक्सपीरियंसेस ऑफ अमृत वेला। अमृत वेला मेडिटेशन करने का क्या फायदा होता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स? एंड एक्सपीरियंस बेस्ड, प्रैक्टिकल, जो आप दुनिया में लोगों को बता सको। अब आप ये सोच लो कि अगर आप कुछ लिख रहे हो और आप ऐसे व्यक्ति को बता रहे हो जो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ है और शायद आपके रिलीजन का है भी नहीं, और ये हम ग्लोबली अगर भेज रहे हैं तो वो बात उसको अंदर में समझ में आ जाए कि भाई अगर मैं सुबह को 4 बजे उठ करके भगवान को याद करूंगा तो ये मुझे फायदा होगा, है ना। तो एक्सपीरियंस बेस्ड कि अमृत वेला उठने से क्या फायदा होता है, हमने उसको प्रॉपर अमृत वेला वर्ड यहां यूज नहीं किया, हमने उसको लिखा है अवेकनिंग एट द टाइम ऑफ नेक्टर। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य। एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पालन करने से हमें हेल्थ वाइज क्या फायदे होते हैं और माइंड पे इसका क्या हमारा असर होता है, क्यों हमारी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाती है ब्रह्मचर्य पालन करने से, और बॉडीज हमारी किस तरीके से हेल्थ बेनिफिट्स हमें क्या होते हैं। तो आप प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स देकर के उसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, आप में से कितने हैं जो डॉक्टर्स हैं, यहां जो डॉक्टर्स हैं प्रोफेशनली डॉक्टर्स हैं, ओके 4-5 हैं। तो एक जो टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ हैविंग सात्विक फूड, सात्विक लाइफस्टाइल, सात्विक फूड, जो हम सात्विक भोजन खाते हैं उसके हमें क्या फायदे होते हैं। अभी आज जो हम देख रहे हैं, जो एक बीमारी जिसने सबको चिंतित किया हुआ है, उसका कारण क्या है, वी आर एक्ट, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एनिमल से इंसानों में आई हैं, जो बीमारियां जानवरों में होती हैं और इंसानों तक नहीं पहुंचती है, लेकिन हम उनको खाते हैं तो वो बीमारी हम तक पहुंच रही है और हमारे पास उसका इलाज नहीं है। अच्छा, आप डाइटिशियन हैं तो आप बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकते हो, तो आप इसमें लिख करके देना एग्जाम्पल्स ऑफ हैविंग सात्विक फूड। तो सात्विक फूड में कौन कौन से फूड्स आते हैं और सात्विक फूड लेने से हमें क्या फायदा है, और अगर हम सात्विक लाइफस्टाइल या तामसिक फूड खाते हैं तो उससे क्या हमको नुकसान है। सबसे बड़ा कंसर्न तो लोगों का ये होता है भाई अनियन गार्लिक तो वेजिटेबल्स हैं, हाँ वो तो कोई जानवर से हमको नहीं मिल रही है, वेजिटेरियन डाइट में अनियन गार्लिक आता है, तो सात्विक फूड में अनियन और गार्लिक क्यों इन्वॉल्व नहीं है, उसका क्या कारण है, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे किसी को। आजकल कोई खाना जो सात्विक खाना है बिना अनियन गार्लिक के इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोग वेगन तो बन रहे हैं, वेगन मतलब दे आर नॉट हैविंग एनी प्रोडक्ट्स विच इज कमिंग फ्रॉम द एनिमल्स, जानवरों से जो भी चीज आ रही है चाहे वो दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो, डेयरी प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो, वो भी छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन प्योर 100% वेजिटेरियन बन रहे हैं। लेकिन जो सात्विक लाइफस्टाइल है, सात्विक फूड जो यहाँ इसका इम्पोर्टेंस बताया गया है, तो उसकी क्यों हमें आवश्यकता है, जरूरत है। तो हम किसी को डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते, हम कोई नया आया है कि भाई आप प्याज और लहसुन भी खाना छोड़ दो, एकदम से नहीं कह सकते विदाउट ए प्रॉपर रीजन। तो क्या रीजन बताएंगे उसमें। ओके, नेक्स्ट आपका है हाउ टू डेवलप अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के मानसिक लेवल पे भी बाहर कुछ भी होता रहे, चाहे कोई बीमारी हो या बाहर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन आप मानसिक तौर पे बहुत शक्तिशाली रहो और शारीरिक रूप से भी आप शक्तिशाली हो आपके अंदर। जब शारीरिक रूप से हम शक्तिशाली कब होते हैं, जब हमारे पास इतनी एंटीबॉडीज हैं लड़ने के लिए, कोई भी चीज हम पे अफेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कोई भी वायरस है या फंगस है या कुछ भी है उससे लड़ने के लिए कैपेबल है, उसको हराने के लिए कैपेबल है, राइट। तो ऐसा इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी का, अपने माइंड का कैसे बनाएं, हाउ टू डेवलप अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। हाँ, रोग हिंदी प्रतिरोधक शक्ति, राइट राइट, ठीक है। तो इनमें से इतने सारे आपको टॉपिक्स दिए हैं, तो इन टॉपिक्स पे आप आर्टिकल लिख सकते हो, पैराग्राफ लिख सकते हो, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हो, और जो भी लिखो थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, तो जो समझ में आ सके, फेयर करके, उसमें ज्यादा काटापीटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपना नाम उसमें लिखना, और अगर आप कहीं कोई एग्जाम्पल दे रहे हो जो आपने इंटरनेट से उठाया है या किसी बुक में आपने पढ़ा है, तो आपको उसको रेफरेंस मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने इस बुक से ये एग्जाम्पल उठाया है, तो आपको उस ऑथर का नाम, जिसने वो लिखा है, उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा और उस बुक का नाम मेंशन करना पड़ेगा। किसी वेबसाइट से आर्टिकल से कुछ इन्फॉर्मेशन उठाई है तो वो मेंशन करनी पड़ेगी, और कुछ बात है जो यूनिवर्सल होती है वो हम सब जानते हैं, उसके लिए आपने उसको पढ़ा भी है और उसको लिखा है तो जरूरी नहीं है उसका मेंशन करना। लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज है जो किसी की पर्सनल राइटिंग है, थॉट है, तो वो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, ओके। और किसी का कोई सवाल है? अगर लिखने वाले, अगर आप सभी टॉपिक्स पे लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए टास्क हो गया करने के लिए। जब आप यहां से जाएं, जाने से पहले आप दे दें, वैल्यू एजुकेशन ऑफिस में, आनंद भवन, थर्ड फ्लोर में मैं वहां बैठती हूँ, शिविका बहन मेरा नाम है, और मेरा नंबर वेबसाइट यहाँ पे ऊपर आ रहा है, और मेरा ईमेल, चाहे तो आप ईमेल भी कर सकते हैं मुझे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर मेरा लिख लीजिए आप, 9079092434, 9079092434, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने नाम के साथ चाहे तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी डेजिग्नेशन, आप क्या करते हैं वो जरूर उसमें लिखें, 9079092434, या फिर आपने जो लिखा है वो मुझे आप आनंद भवन थर्ड फ्लोर में जाकर के दे भी सकते हैं। और ईमेल करना है तो ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है bkshivika@gmail.com। bkshivika@gmail.com, ओके। और किसी का कोई सवाल है? जी, सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग में आपके आते हैं हेल्दी रिलेशंस, आपके रिलेशनशिप्स कितने हेल्दी हैं लोगों के साथ, आप हमेशा ऑड वन आउट रहते हो या सबके साथ जल्दी मिक्सअप हो जाते हो, लोग आपका कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितनी रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी बात की कितनी वैल्यू होती है। बहुत बार क्या होता है, स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, लोग वो ज्यादा स्पिरिचुअल बातें अगर आप करने लगते हो तो लोग आपको अलग कर देते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल बात को कहने का भी तरीका होता है, कब आपको उनको ज्ञान देना है, कब आपको उनके साथ रहना है। तो कभी कभी सेवा अपने वाइब्रेशन से होती है, जरूरी नहीं है हर वक्त ज्ञान देकर के सेवा होगी, लेकिन आप अपने वाइब्रेशन से भी सेवा कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी से सेवा कर सकते हैं। भले आप करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो लोग अभी करके दे सकते हैं वो अभी करके दे दे, लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो भले आप घर जाकर के भी भेज सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम फिर उसको एडिट भी करेंगे, हम लोग उसको थोड़ा रिफाइन भी करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, आपने जो लिखा है उसको कंपाइल करके फिर एक रिपोर्ट भी बनाएंगे। जी खड़े होकर के बोलिए। हाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आप बता सकते हो, लेकिन उसमें कोई नाम नहीं मेंशन करना किसी का। खुद के अनुभव हाँ लिख सकते हो, खुद के अनुभव। हाँ मेडिटेशन आप अमृत वेला में करते हो राइट, आप सुबह उठ करके मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन फिर उसका फायदा आपको क्या हो रहा है? बोथ यू कैन राइट। एनी अदर क्वेश्चन? यस आप आगे आ जाइए, थोड़ा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, आप भी आगे आ जाइए, जिसका कोई सवाल है वो आगे आ जाए प्लीज।
ओम शांति। मैं एजुकेशन से हूं, एज ए लेक्चरर रिटायर हुआ हूं दिल्ली गवर्नमेंट से, और मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने एमएससी भी किया है बीएस से और पीजी डिप्लोमा भी किया है, और 39 साल का मुझे एजुकेशन का एक्सपीरियंस है टीचिंग का दिल्ली गवर्नमेंट से। ये एमएससी करने के बाद मैंने प्रयास किया कि जो हमने वैल्यू एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त की है ये समाज के लिए लाभदायक हो। इसके लिए मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में डायरेक्टर से संपर्क किया कि हम फ्री एजुकेशन देंगे आपको, वैल्यू एजुकेशन में कोई चार्ज नहीं करेंगे, और हमारे पास ट्रेंड जो है ना टीचर्स हैं, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली गवर्नमेंट के सिसोदिया जी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनसे भी मैंने संपर्क किया और मेरी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दी गई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, जबकि मैंने ये क्लियर लिखा था कि हम कोई चार्ज नहीं करेंगे और आपको ट्रेंड स्टाफ देंगे वैल्यू एजुकेशन पर। उसके बाद मैंने साउथ दिल्ली एमसीडी, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी दोनों के डायरेक्टर को अप्रोच किया और वहां पर भी रिजेक्ट हो गई। क्योंकि कारण क्या था कि मैंने आध्यात्मिक मनोविकार निवारण केंद्र के नाम से के बैनर तले ये एप्लीकेशन दी थी, तो रिजेक्ट हो गई दोनों जगह, एमसीडी में भी और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी। जबकि दो संस्थाएं हैं हमारे पास दिल्ली में, रामाकिशन मिशन और अनुवर्त, और वो दोनों संस्थाएं जबकि उनके पास ट्रेंड टीचर्स नहीं हैं, वो सीबीएसई से और डायरेक्टरेट से मिलकर के और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये सुविधा प्रोवाइड कर रही हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय जिनके पास विभिन्न संस्थाओं से ट्रेन टीचर हैं और पूरे भारतवर्ष में जिसका स्ट्रक्चर है, वो अगर प्रयास करें तो हमारा ये जो सुविधाएं ऐसी संस्थाएं दे रही है जिनके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, तो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं। अगर एक संस्था के रूप में, क्योंकि हमारे पास जो है ना, देखिए कम से कम 4 यूनिवर्सिटी से आप ट्रेन टीचर दे रहे हैं, क्वालिफाइड स्टाफ दे रहे हैं, और जब तक कोई भी हम प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, अगर प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद हम उसको समाज के लिए उपयोगी नहीं करते तो कुछ दिन बाद हमारी जो शिक्षा वो व्यर्थ हो जाती है, चाहे मेडिकल का है, चाहे इंजीनियरिंग का है, चाहे आध्यात्मिक विज्ञान का है। हम सब जो है डिग्री कोर्स भी कर रहे हैं, एमएससी भी कर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा भी किए हैं, डिप्लोमा भी किया है, और स्पिरिचुअल साइंस में भी किया, वैल्यू एजुकेशन में भी किया है, और हमारे पास काफी स्टाफ है। अगर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों में, मैंने ट्राई किया कुछ स्कूलों में जाने का, वो कहेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से परमिशन लेकर आइए तब हम आपको अलाउ करेंगे, या एमसीडी से परमिशन लेकर आइए, या सीबीएसई से लेकर आइए। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी यही बात है कि आप जो है ना हमारी हायर अथॉरिटी से परमिशन लेकर आइए, और वो परमिशन तब देंगे जब कोई रजिस्टर्ड संस्था आपको स्पॉन्सर करेगी, जैसे कि रामकृष्ण मिशन कर रही है और साथ में जो है ना अनुवर्त कर रही है। तो मेरा निवेदन ये है कि जितना अच्छा कार्य आपने वैल्यू एजुकेशन स्पेशलिटी में किया है, इसका सबसे उपयोग तभी हो सकता है कि क्योंकि हर एक स्टेट में समाज कल्याण विभाग भी है, और समाज कल्याण विभाग में जो है वो वर्त आश्रम है, दूसरी संस्थाएं हैं, और विद्यालय में तो हर एक जगह आप कर ही सकते हैं। तो हाँ जी, और जहां तक मेरी बात है, अभी जैसे दीदी ने बताया है, चाहे लेक्चरारशिप है, चाहे जो है ना एग्जामिनरशिप है, या एडमिनिस्ट्रेशन है, या इसी एजुकेशन संबंधी कोई भी कार्य है, वो करने के लिए मैं कैपेबल हूँ और कोऑर्डिनेट कर। दिल्ली मेरा क्षेत्र है, मैं दिल्ली रहता हूँ, और हमारे प्रताप नगर में जो सेंटर है, जो रीजनल डायरेक्टर थे, उनके साथ मैं काम कर सकता हूँ और कोऑर्डिनेट भी कर सकता हूँ।
बहुत खुशी की बात है। हमारे जो सेंटर्स बने हुए हैं ब्रह्मा कुमारी के, वो दे आर ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड सेंटर्स ओनली, और सेंटर्स की जो बहनें हैं वो स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत जाती हैं, और उनको परमिशंस भी है हर तरीके से सेवा करने की। लेकिन जो हमारे कोर्सेज हैं, कुछ जहां ऑब्स्टेकल आता है वो सिर्फ ये है कि हमारे कोर्सेज एनसीईआरटी, अगर स्कूल की बात की जाए तो एनसीईआरटी अप्रूव्ड नहीं है, तभी हम केंद्रीय विद्यालय या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं, और यूनिवर्सिटी में कहा जाए तो यूजीसी अप्रूव्ड नहीं है, उसी के कारण से हमें प्रॉब्लम आता है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल एंड द रेपुटेशन ऑफ ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन, वी आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम टू कंडक्ट दीज कोर्सेज। लेकिन अगर आप ज्यादा जिसको कहते हैं परमात्मा की बात करते हो, या ज्यादा हिंदू धर्म का लक्ष्मी नारायण बोलते हो, भगवान ज्यादा करते हो, गॉड आत्मा ये सब बातें ज्यादा बोलते हो, तो स्कूल वाले उन चीजों को मना करते हैं। लेकिन बच्चों को अगर आपको कुछ सिखाना है, स्टूडेंट्स को सिखाना है, तो आप ऐसे टॉपिक्स चुनो जो हर एक लेवल पे लोग आजकल लेकर के बात कर रहे हैं, स्ट्रेस को लेकर के कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के कर रहे हैं। तो इस स्टोरी बेस्ड करो, एक्सपीरियंशियल बेस्ड करो बातें, तो जो चीज एक्सेप्टेबल है लोगों की लाइफ के लिए, प्रैक्टिकली जरूरी है। इसलिए आपको टॉपिक्स भी जो हमने दिए वो वही दिए, मेडिटेशन सब लोगों ने उसको समझा है, जाना है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी मेडिटेशन को स्ट्रेस दिया है, योगा पे स्ट्रेस दिया है, योगा करवाओ, योगा आप लोगों को करवा सकते हो, स्टूडेंट्स को करवा सकते हो, उसके साथ साथ मेडिटेशन भी करवा दो उनको, उनको बताओ मेडिटेशन में क्या होता है। तो किसी चीज को आप बाहर लौकिक को और अलौकिक दोनों को जोड़ के कराएं तो सेवा ऑटोमेटिकली होगी, फिर वो आपको कैटेगराइज नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपना ही ज्ञान सुनाते हैं और बाकी और कुछ नहीं बताते हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए सेवा कराने करने की ये युक्ति है, आप सब समझदार हो कैसे करना है, क्यों ये ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसका रीजन भी आप अच्छे से ही जानते हो। और कोई है जिसको कोई क्वेश्चन है? अच्छे पेपर पे लिखिए, अच्छे पेपर पे लिखो, बस काटा पीटी ज्यादा ना हो, है ना। पहले आप भले ही ऐसे लिखो, रफ लिखो, फिर बाद में उसको फेयर करके दो हमको। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, व्हाट्सएप मैंने नंबर नोट कराया ना, उसमें भेज सकते हैं आप। नहीं ऐसा नहीं, अभी तो मैंने ही दिया है ना टास्क, इसलिए ओके। दो मिनट बाबा की याद में बैठ करके हम फिनिश करते हैं।